तीन लोग तीन काल के, पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को नमन। वृषभदेव से आदि लेकर वर्धमान महावीर पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक 2400 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चरित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर महाराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। दो काव्यों में जिनेंद्र भगवान के तीर्थंकर के 14 अतिशयों का, देवकृत 14 अतिशयों का वर्णन है। सार्वाधमागदीयादिना देवोपनीतांश्चतुर्दशातिशयानाः। सार्वाधमागदी को आदि लेकर देवों के द्वारा उपनीत निकट लाए हुए चतुर्दशातिशयान 14 अतिशयों को आह बताते हैं। सार्वार्धमागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया सर्वर्थ फलस्तवक प्रवाल कुसुमोपशोभित तरु परिणामा आदर्श तल प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा विहरण मन्वेत्य निल परमानंदश्च भवत सर्वजनस्य। दो काव्यों में पूरे नहीं हुए, आगामी काव्यों में पूर्ण हो पाएंगे। मरुतोपि सुरभि गंधव व्यामिश्रायोजनांतरं भूभागं व्युपशमित धूलिकंटक तृणकीटक शर्करोपलं प्रकुर्वन्ति तदनुस्तनित कुमारा विद्युन्माला विलासहास विभूषा प्रकिरन्ति सुरभि गंधिं गंधोदक वृष्टिमाज्ञया त्रिदशपतेः। कितने हुए? पहला सार्वार्धमागधी भाषा जिसका कल विवरण था, दूसरा सब जीवों में परस्पर मैत्री भाव, कितने भी लड़ने झगड़ने वाले हों सब देवलोग उनकी मित्रता करा देते हैं, उनमें ऐसी क्षमता होती है और कषाय छोड़ने की क्षमता जीव में भी होती है। दोनों बातें हैं, उपादान जीव हो गया और निमित्त देव हो गया। सर्वर्थ फलस्तबक प्रवाल कुसुमोपशोभित तरु परिणामा। ये प्रीतिंकर देव का अतिशय है, सब में मित्रता करा देते हैं। मागध देव सर्व भाषा रूप दिव्य ध्वनि का परिणमन करता है और प्रीतिंकर देव अन्योन्य मित्रतया च वर्तन्ते इति द्वौ अतिशयौ। परस्पर मित्रता से सारे प्राणी वर्तन करते हैं। फिर तीसरा अतिशय जो है, सर्वे चित्ते ऋत अवश्य श्री शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, निदाघ, प्रावृषः, 6 ऋतुओं के नाम लिखे उन्होंने। एक ऋतु है शरद ऋतु, जो भाद्रपद पूर्णिमा के पश्चात प्रारंभ होती है। फिर दूसरी ऋतु जो है हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष महीने तक चलती है, पौष पूर्णिमा तक। दो दो मास की एक ऋतु होती है। पंद्रह दिन का एक पक्ष, दो पक्षों का एक मास, दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतुओं का एक अयन और दो अयनों का एक संवत्सर होता है। संवत्सर को वर्ष कहते हैं, अयन 6 माह को कहते हैं। तो इसमें दक्षिणायन और उत्तरायण ऐसे दो भेद होते हैं। जब सूर्योदय के समय जो पूर्व दिशा है उसकी बाईं ओर यदि सूर्य होता है तो वो उत्तरायण है, क्योंकि पूर्व की बाईं दिशा में उत्तर दिशा होती है। और फिर पूर्व की दाहिनी ओर यदि सूर्य है उदय के काल में तो वो दक्षिणायन है, क्योंकि पूर्व के दाहिनी ओर दक्षिण दिशा होती है। तो उत्तरायण में जब सूर्य सर्वाधिक उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाता है उदय काल में, तब दिन सबसे बड़ा होता है। और जब दक्षिणायन में सर्वाधिक दक्षिण दिशा में चला जाता है तब दिन सबसे छोटा होता है, ऐसा क्रम चलता है। और जो मास है 12 मास, उनके नाम पूर्णिमा के नक्षत्र पर आधारित है। जैसे उदाहरण के लिए जैन नव वर्ष श्रावण मास से प्रारंभ होता है, गुरु पूर्णिमा के बाद से जैन नव वर्ष। इस बार तो अधिक मास है, तो वो जो वीर शासन जयंती अपन बोलते हैं वहां से जैन नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो वो जो पूर्णिमा आती है श्रावण मास की, वो श्रवण नक्षत्र युक्त होती है, इसलिए उस मास का नाम श्रावण मास है। फिर भाद्रपद मास आता है, उसकी पूर्णिमा पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, इसलिए उसका नाम भाद्रपद है। फिर भाद्रपद के बाद अश्विन मास आता है, तो पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होता है। ये सामान्य नियम, कभी कभी आगे पीछे होता है लेकिन लगभग यही रहता है नियम। फिर कार्तिक मास आता है तो कार्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र होता है। फिर मार्गशीर्ष मास आता है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होता है। फिर पौष मास आता है, पौष पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होता है। फिर माघ मास आता है, माघ पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है। फिर फाल्गुन मास आता है, फाल्गुन पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। फिर चैत्र मास आता है, चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है। फिर वैशाख मास आता है, वैशाख पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होता है। ज्येष्ठ मास आता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। फिर आषाढ़ मास आता है, आषाढ़ पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है। जैसे 27 नक्षत्रों में से 12 नक्षत्र के नाम से 12 मास के नाम जुड़े हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर वो नक्षत्र पड़ते हैं। तो ऐसे 6 ऋतुएं हैं यहाँ पर। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत हिम शब्द से हेमंत बना है। इस ऋतु में जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ बर्फ गिरती है। अब जहाँ नहीं गिरती वहाँ कौन क्या कर सकता है। हेमंत, हिम है अंत में जिस ऋतु के, यानी जिस ऋतु पर्यंत हिम वर्षा होती है। फिर शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है, ठंड रहती है, बर्फबारी कम होने लगती है, बर्फ रुक जाती है। कभी कभी होती है बर्फबारी, लेकिन सामान्यतः हेमंत ऋतु बर्फ से संबंधित है। फिर शिशिर ऋतु में धीमे 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 वो ठंड घटने लगती है। इसके बाद वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु में नए पत्ते, नए पल्लव, नए पुष्प और पक्षियों की विशेष चहचहाहट, एकदम प्रकृति वसंत ऋतु में खिल उठती है। वसंत के आने पर प्रकृति खिल उठती है, संत के आने पर संस्कृति खिल उठती है, ऐसा कोई मुनिराज ने कहा था। हमने उस पर 2 पंक्तियां भी लिखी थी काव्य में। जो वसंत के आ जाने पर प्रकृति स्वयं खिल उठती है, वैसे ही जब संत पधारे संस्कृति ही खिल उठती है। ऐसी 2 लाइनें लिखी थी। फिर वसंत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु, जिसको यहाँ पर निदाघ शब्द लिखा है, निदाघ। नित्राम दाहो यत्र स निदाघ, जिस ऋतु में अत्यंत दाह रहती है, गर्माहट रहती है। कई स्थानों पर तो बाहर जाओ तो कुछ लोगों को सनस्ट्रोक हो जाता है, लू लग जाती है, कई लोग मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, और कहीं कहीं पक्षी भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पेड़ पर बैठे हुए हैं लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो हाँफने लग जाते हैं, और कई बार पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, पशुओं की, जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है, इतनी गर्मी पड़ती है। हस्तिनापुर में जब हम गए थे तब वहाँ पर 49 तापमान था, और उसमें लिखा हुआ था कि तापमान भले ही 49 हो लेकिन वहाँ का वातावरण 56 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा है, तो बुखार आ गया था। कई जानवर और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। अब जो लोग एसी कूलर वाले हैं उनकी बात अलग है। ऐसी 3 गाथाएं मूलाचार ग्रंथ में आती है कि अब देखो, सुख सुविधा में बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें करना और फिर साधुओं का वर्णन करना, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। अब वहाँ पर जाकर के आप अगर देखो उनका अनुभव क्या है, वो कैसी प्रतिकूलता में समता धारण किए हुए हैं, और आत्मज्ञान तो 24 घंटे रहता है उनके पास। और आत्म ध्यान शब्द का अर्थ भी अभी जो चल रहा है वो थोड़ा सा विचारणीय है। आत्म ध्यान का अर्थ सब लोग क्या समझते हैं? आत्मा का ध्यान। अभी जो भजन चलता है, एक परम दिगंबर मुनिवर देखी अयूं हर की जाय, गुजराती भजन है वो, फिर उसको ट्रांसलेट करके लोगों ने हिंदी बना दिया, संभवतः राजमल पवैया जी ने उसकी हिंदी की। हृदय हर्षित होता है, मूल में गुजराती है वो अध्यात्म प्रेमियों द्वारा बनाया हुआ भजन, और मुनियों को देखकर सम्यक दर्शन होता है, ऐसी पंक्ति भी आती है उसमें। सम्यक दर्शन होता है, तो ये कथन जो है ना, ये जो पाठक है या जो श्रोता है कभी कभी सुन करके अपने अंदर धारणा बन जाती है कि परम दिगंबर मुनिवर देखी। अब वो परम शब्द पर ध्यान नहीं जाता, ऐसा लगता है कि सारे दिगंबर मुनिवर परम की श्रेणी में ही आते हैं। नहीं, मुनिवर परम भी होते हैं, मुनिवर मध्यम भी होते हैं, और मुनिवर जघन्य भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के मुनि होते हैं, अल्प शक्ति वाले मुनि भी होते हैं, मध्यम शक्ति वाले भी होते हैं, और महाशक्ति संपन्न मुनि भी होते हैं। इस काल में भी मुनियों ने कितने घोर कष्टों को सहन किया है। अभी जो ये घटना हुई थी कर्नाटक में, उसको साधारण समझते हैं आप? बिजली के झटके 1.5 घंटे तक उनने कैसे सहन किए होंगे कल्पना करो आप। एक बार बिजली का झटका लगता है तो हालत खराब हो जाती है, 10 मिनट तक तो धड़कने तेज रहती है। पर वो दीक्षित थे, और सन 89 में उनकी मुनि दीक्षा हुई थी, तब से लेकर तपस्वी तपस्वी बने हुए थे, तपस्या में लीन थे। जो भी है, जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं साधु के, उसको देखकर आप मूलाचार का स्मरण मत करो, उसको देखकर रत्नकरण श्रावकाचार का स्मरण करो कि मेरा क्या कर्तव्य है। मूलाचार का स्मरण करोगे तो आपको लगेगा कि साधु भ्रष्ट है, साधु गलती कर रहे हैं, और रत्नकरण श्रावकाचार का स्मरण करोगे तो लगेगा कि नहीं, मेरा कर्तव्य है कि उनको उनकी रक्षा करना, उनको थामना। और ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि के 8 लक्षण कुंदकुंद आचार्य महाराज ने प्राकृत गाथाओं में दिए हुए हैं, कैसे पहचानो कौन सम्यक दृष्टि। तो फिर बोले कि पहचानने वाला पहले खुद सम्यक दृष्टि हो, ये पहली शर्त। वो मिथ्या दृष्टि का विषय नहीं, वो चौथी कक्षा का विद्यार्थी MA के पेपर कैसे जांच सकता है, उसका विषय नहीं है। तो एक सम्यक दृष्टि, सम्यक्त के आराधक आचार्य उपाध्याय और साधु को 8 चिन्हों से पहचानता है। उन 8 चिन्हों में एक चिन्ह है साधु के दोषों को प्रकट न करना, और साधु यदि श्रद्धा से स्खलित हो रहे हैं या फिर क्रियाओं से नीचे गिर रहे हैं तो उनको थाम लेना। ये सम्यक्त के आराधक के चिन्ह, और जो क्रिया से गिर रहे हैं उनकी निंदा करने वाले हैं वो सम्यक्त के विराधक हैं। बहुत सरल है निंदा करना। और फिर अभी जो तुलना होती है कि नहीं हमारे गुरु एकदम शुद्ध है, और वो दूसरे जो गुरु हैं वो तो पूरे सब ऐसे ही शिथिलाचारी हैं। पता है शिथिलाचार किसे कहते हैं? शास्त्र पढ़े हैं क्या कभी? मुंह चला रहे हो इतना। शिथिलाचार की 4 श्रेणियां होती है, पता है क्या? अरे मात्र क्रिया अनुशासित रखने से कोई अशिथिलाचारी नहीं हो जाता। शिथिलाचार ज्ञान संबंधी भी होता है, शिथिलाचार श्रद्धा संबंधी भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आचार शब्द जुड़ा है तो उसका संबंध चारित्र से है। शिथिलाचार का अर्थ भ्रष्टाचार है ये समझना बहुत बड़ी भूल है। शिथिल का अर्थ भ्रष्ट कहां से होता है? हो गया, डिक्शनरी में देखना जरा शिथिल का अर्थ क्या होता है। किसी एक डिक्शनरी में भी नहीं लिखे लिखा मिलेगा भ्रष्ट। शिथिल का अर्थ होता है ढीला, और उसकी चार श्रेणियां होती है। अभी जब मुनियों का वर्णन आएगा तब अपन इस पर विस्तार कर सकते हैं, आप हमें स्मरण कराइएगा। विषय थोड़ा सा महत्व का है, समझने योग्य है, क्योंकि लोग बड़े शान से कहते हैं कि हम तो उन्हीं गुरु को नमस्कार करते हैं, अन्य किसी के सामने हमारा माथा नहीं टिकता। अरे तुम्हारे माथे की कीमत किस कितनी है ये तो सोचो, है क्या वस्तु तुम्हारा माथा? ये विशाल जिन शासन है, इस जिन शासन में तुम्हारे न झुकने से कोई साधु असाधु नहीं हो जाएगा। और शास्त्र पढ़ोगे तो पता चलेगा कि साधुओं से कितनी गलतियां होती हैं। और तीर्थंकर भगवान बोल गए हैं कि इस पंचम काल में एक भी साधु कालेत्र किल साधवः सातिचार चरित्राश्च। धर्मरत्ना का चौथा अध्याय जयसेन आचार्य उसमें लिख रहे हैं कि सातिचार चरित्राश्च कालेत्र किल साधवः भाषितास्तीर्थनाथेन तत्तथ्यं कथम अन्यथा। तीर्थनाथ ये बात भाषित कर गए, बतला गए कि अत्र काले इस काल में साधव इस भरत क्षेत्र के साधु सातिचार चरित्राश अतिचार युक्त चरित्र वाले होंगे, अर्थात दूषित चरित्र वाले होंगे। दूषित का अर्थ सर्वथा भ्रष्ट नहीं है, कुछ कमजोरी रहेगी उनमें, ये बात है। और ये तीर्थंकर कह गए हैं तत्तथ्यम कथम अन्यथा, उनके तथ्य भूत वचन असत्य कैसे हो सकते हैं? तो अभी साधु का स्वरूप समझने के लिए एक बार हमने मुमुक्षु मंडल के बीच 3 घंटे इस पर व्याख्यान किया था। चिंतामणि नाम का एक क्षेत्र है गुजरात में, उत्तर गुजरात में साबरकांठा में, तो वहाँ पर हमने व्याख्यान किया था इसका। तो वहाँ पर हमने बताया था कि 9 ग्रंथ पढ़ोगे आप तब समझ में आएगा कि जैन साधु क्या होते हैं। आप नियमसार और मूलाचार में समझ रहे हो कि साधु हमारी समझ में आ गए कौन साधु है कौन असाधु है? अरे इतना सरल होता तो फिर तुम खुद साधु बन जाते। खेदपूर्ण है ये बात। श्रीमद राजचंद जी का स्मरण करिए आप, उनसे जब किसी ने पूछा कि दिगंबर श्रमण के बारे में आप क्या बोलना चाहते, उनने उत्तर दिया कि दिगंबर श्रमण के विषय में दिगंबर श्रमण बने बिना मुझे कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, मैं कैसे बोलूं कुछ? जब मैं दिगंबर श्रमण हूं ही नहीं तो मैं दिगंबर श्रमण के बारे में क्या बोल दूं? ठीक है, पर शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं और कुछ विद्वान लोग भी बहुत साधुओं के बारे में ज्यादा विवेचन करते हैं, ज्यादा बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके लिए हानिकारक प्रमाणित होता है। एक भी मुनि निंदक विद्वान सुमरण को प्राप्त नहीं हुआ, आप सर्वेक्षण करके देख लेना। जिन जिन ने मुनि की आलोचना की, मुनि पर टीका टिप्पणियां की, उन सब की मृत्यु नष्ट हो गई। मृत्यु ने तो उनको नष्ट किया लेकिन उनके भावों ने उनकी मृत्यु को नष्ट कर दिया। गलतियां बहुत सारी होती है। अब कदाचित जो मुनियों की गलती देखने वाला है वो दीक्षा ले ले और आचार्य बनकर के प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ ले कि कौन सी गलती के साधु को क्या क्या प्रायश्चित मिलते हैं, तो वो अपने अतीत पर केवल पश्चाताप करेंगे और प्रायश्चित करेंगे कि मैंने अनजाने में मुनियों के बारे में कितनी दुर्भावना की और असाध्य कर्मों का बंध बांध लिया। तो छहों ऋतुओं में से जो ऋतुओं का वर्णन आता है मूलाचार ग्रंथ में, हेमंते धिदिमंता सहंति ते हिमरयम परम घोरम अंगेषु निवडमाना नलिनी दल विनाशयम सीयम। हेमंत ऋतु में वे मुनिराज जो कषाय कुशील मुनि की श्रेणी में जो अभ्रावकाश योग को धारण करने वाले साधु हैं, वो हेमंत ऋतु में किसी जलाशय के निकट अथवा चारों ओर से जहाँ पर वायु का प्रवाह हो रहा है ऐसे खुले स्थान पर चौराहे आदि पर तपस्या में लीन हो जाते हैं और सहंति ते परम घोरम हिम रयम अत्यंत भयंकर बर्फ की धूल को वो सहन करते हैं। एक बर्फ का कण अगर थोड़ी देर तक अपने शरीर पर रहता है तो अंदर तक चुभन होती है और वो पूरे शरीर पर बर्फ की धूल को सहन करते हैं। अंगेषु निवडमाना और अपने शरीर के अंगोपांगों के प्रति वो निवर्तमान है अर्थात कायोत्सर्ग में स्थित है, वो छोड़ चुके हैं शरीर को। अब उनने जब तक कायोत्सर्ग है तब तक काया का वो उत्सर्ग कर चुके हैं, काया को छोड़े हुए हैं वो, तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। नलिनी दल विनाशयम सीयम, कैसी ठंड पड़ रही है उस समय, तो बोले पाला जब पड़ता है तब शीतकाल में वनस्पतियों एक प्रकार से उजड़ जाती है, एक पत्ता आपको देखने नहीं मिलेगा। और सरोवरों में जो कमल वन होते हैं वो सारे के सारे बर्फ से, देखो उस पर जल आता है, जल के कण आते हैं तो वो कमलिनी का पत्ता नष्ट नहीं होता, लेकिन जब बर्फ गिरती है तो पूरे काले पड़ जाते हैं वो पत्ते और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इतनी भयंकर ठंड में वो निर्ग्रंथ मुनिराज निर्वस्त्र उस तपस्या में लीन है। अभी सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व की बात छोड़ दो, केवल इस द्रव्यचर्या की भी बात सोच करके देखो तो क्या ये सुगम है, और ये चर्या किसने बताई है, जिनेंद्र भगवान ने। इसलिए उनकी बताई हुई ये जो द्रव्यचर्या है उसका भी आदर करना सीखना है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य लिंग अनादर के योग्य हो, सम्यक तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अभी तो बाहर से जो चर्या है साधु की वो भी जिनेंद्र प्रणीत होने के कारण यदि आगम सम्मत चर्या है, आगम भी बहुत विस्तृत है, पूरा समझना होगा। कितनी गलतियों के बाद भी छठा गुणस्थान बना रहता है पता है, कोई ये सोच ले कि गर्मी सहन नहीं हो रही, बाहर आकर हवा में बैठ गए साधु तो अब छठा गुणस्थान थोड़ी रहा होगा, वो तो पांचवे या चौथे में आ गए होंगे। इतना आसान नहीं है, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो इसलिए अपन उस दिशा में न जाकर अगर भक्ति सेवा विनय इस दिशा में बढ़ते हैं तो अपना अहित नहीं होगा और दोषक ग्राहक बनेंगे तो हित नहीं होगा। दोनों बातें हैं। तो ऋतुओं का वर्णन वहां पर भी आता है। बात शाखा उपशाखा में चली गई तो छह ऋतुओं के नाम दिए। निदाघ, बहुत भारी गर्मी पड़ रही है लेकिन वो चट्टानों पर खड़े हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। भगवान कह गए हैं कि गलतियां सबसे होगी इस काल में, लेकिन भक्त अपने गुरु में गलत को देख ही नहीं सकता। जिसको आराध्य में गलत पक्ष दिखता है वो आराधक नहीं हो सकता। ज्ञान में है सारी बातें लेकिन भक्ति में 1% भी कमी नहीं आती। और यदि आप सचमुच दिगंबर जैन हैं और अपने आप को दिगंबर जैन मानने में गौरवान्वित है तो फिर दिगंबर मुद्रा के प्रति आपके क्या भाव हैं इस पर विचार कर लेना बिना किसी पक्षपात। न संत भेद, न पंथ भेद, न ग्रंथ भेद, न संघ भेद। नमोकार मंत्र में ये तो नहीं लिखा नमो लोए सवस, नमो लोए संघ साहुणम तो नहीं लिखा। नमो लोए सव साहुणम लिखा तो ये बात तो थोड़ी विचार नहीं किया। कोई कषाय की बात नहीं है, केवल एक चर्चा की बात थी। तो ये छह ऋतुएं हैं। तेषां फलस्तबकाश्च प्रवालाश्च कुसुमानिच, जहां भगवान विराजमान होते हैं वहां पर देवलोक ये एक अतिशय और करते हैं। छहों ऋतुओं के फल कोमपल कुसुम आदि से वनस्पतियों को शोभित कर डालते हैं। अब शीतकाल में भी अगर राजगृह में महावीर स्वामी आएंगे तो आम्रफल मिलेंगे और गर्मियों में आएंगे तो भी शीतकाल के फल मिलेंगे। छह ऋतुओं के फल मिलते हैं वहां पर। और ये सारे जो आजकल विदेशों के फल आ गए ड्रैगन फ्रूट और वो सब, अब जहां जो वृक्ष होगा वहां पर वो फल प्राप्त हो जाएंगे भगवान के प्रभाव से और देवों के अतिशय से। तय रूप शोभित तरु परिणामा ये श्याम सा तथोक्ता। कासो कौन मही चेत्युत्तरार्धेन संबंधात, इस धरती से उसका संबंध है। कैसी हो जाती है धरती कि जिसकी सारी वनस्पतियां सर्व ऋतुओं के फल पुष्प आदि से सुशोभित है और आदर्श इत्यादि आदर्श दर्पण तस्य तलम मध्यम तेन प्रतिमा सदृशी, यानी ऐसा लगता है कि धरती पूरी दर्पण जैसी स्वच्छ हो गई है। जहां भगवान आते वहां पर सारी पृथ्वी दर्पण जैसी सुंदर हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। रत्नैर निर्मिता वृत्ता रत्नमयी, रत्नों से बनी हुई वो पूरी धरती हो जाती है, रत्नमयी हो जाती है। जायते संपद्यते मही च मनोज्ञा, और मनोज्ञ इतनी मनोज्ञ इतनी मनोहर हो जाती है कि सकल जन नयन मन प्रीति करी, सब लोगों की आंखों को और मन को प्रसन्न करने वाली हो जाती है, प्रीति उत्पन्न करने वाली हो जाती है। ये देवातिशय है। तो अभी आज अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे का आगे देखेंगे। जय नम जय तो शास्त्र।